ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव पाहि माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चंद्र से कर रक्ष मां, चंद्र से कर, चंद्र से कर, चंद्र से कर रक्ष मां, चंद्र से कर रक्ष मां, चंद्र से कर रक्ष मां। ओ ओ ओ प्रेमप्रिय आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दैया प्रायोजित परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए 74वां श्लोक। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि, भेदो दुक्तेर दिव्य गंधैर मंदहि, आशा साटी कस्य पादारविन्दम्, चेता पेटिं वासितां मे तनोतु, कल्याणीनं सर सरसचित्रगतिं सवेगम्, सर्वेङ्गितज्ञाम् अनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम्, चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे, नेता समस्त जगताम् वृषवाधिरूढ, भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसंती, कादंबनीव कुरुते परितोष वर्षम्, संपूरितो भवति यस्य मनस्त तटाग, तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत्, बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वर पाद पद्म, सक्ता बधूर विरहिणी वसदा स्मरंती, सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि, सम्मोहितेव शिव मंत्र जपेन विन्ते। आदि गुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आशा पास क्लेश दुर्वासनाधि, भेदो दुक्तेर दिव्य गंधई अमंदहि, आशा साटी कस्य पादारविंदम, चेता पेटिम वासिताम मे तनोतु। एक दृष्टांत से आप इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। आपने एक कमरा बना रखी है घर के लिए, आपको समझ में आवे वो दृष्टांत बता रहा हूं। संयोग से एक हफ्ते के लिए आपको बाहर जाना था और कमरा बंद करके ताला लगाकर जाना था। निकलने से पहले, कमरा ताला लगाने से पहले उस कमरे में एक बिल्ली घुस गई थी। आपको समझ में आए, वो दृष्टांत दे रहा हूं। बिल्ली घुस गई थी, अपने उसके बारे में ख्याल नहीं रखा और हतार में फटाफट दरवाजा बंद कर ली, ताला लगा दिया और चल पड़े आप। तो वो बिल्ली चिल्लाने लगी थोड़ी देर के बाद। जब बाहर निकलने की कोशिश किया बिल्ली ने, तो कहीं निकलने का रास्ता तो मिला नहीं और चिल्लाने लगी। सुनने वाला कौन है भाई, घर में तो कोई है ही नहीं, ताला लगा दिया, निकलने का रास्ता नहीं है। अब कमरे में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर एक दिन दो दिन तो वह चिल्लाती रही। बाद में किसी अलमारी के कोने में छुपकर मर गई। होता है ना, चूहा मर जाते हैं, छिपकली मर जाती है ना। तो हमने बिल्ली कह दिया और क्या, तो मर गई। अब वो बिल्ली सड़ गई, मरने के बाद तो सड़ना अनिवार्य ही था। पूरा का पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ है। जब आप हफ्ता 10 दिन के बाद अपने घर लौटे, ताला खोली और उस कमरे के अंदर घुस गए, तो क्या आनंद आया होगा आपको? नहीं है? आया होगा ना आनंद? दुर्गंध से उस कमरे के अंदर घुसने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अब करें क्या, ये क्या हुआ? तो पता लगाया कि भाई कुछ न कुछ मरा है। क्या मरा है, कहां मरा है, खोजने लगे। तो अलमारी के बीच में वह बिल्ली का अवशेष सड़े हुए अवस्था में मिल गया। तो पता चल गया ना कि ये बिल्ली मरने के कारण पूरा कमरा दुर्गंध हुआ है। तो अब क्या करोगे? आपके घर में यदि नौकर चाकर हो तो उनको कहोगे कि इसको निकाले, फेंको और सफाई करो। और आपके नौकर चाकर न हो तो उसकी सफाई करने का काम खुद को है, खुद ही करना पड़ेगा भाई। तो बड़े मुश्किल से नाक में पट्टी बांधी, हाथ में झाड़ू लिया, उस मरे बिल्ली के सब अवशेष, सड़े हुए अवशेषों को हटाना जरूरी था। तो अपने हाथ से निकालकर ले जाकर बाहर फेंक दिया डब्बे में, घर से बाहर। उसके अवशेषों को तो फेंक दिया, लेकिन कमरे के अंदर दुर्गंध तो यथावत ही है। तो अब क्या करोगे बोलो? उस दुर्गंध को मंद करने के लिए तीव्र सुगंधित द्रव्यों को लाकर छिड़काव करोगे। यही करते हो कि नहीं? बढ़िया अगरबत्ती जलाओगे या कोई बढ़िया इत्र वगैरह, सेंट वगैरह चारों तरफ कमरों में छिड़कोगे। तब बढ़िया सुगंधित द्रव्य के तीव्र वासना से कमरे में विद्यमान दुर्वासना, दुर्गंध को तुम निस्तेज करोगे। हटाओगे तो क्या हटाओगे, जाएगा तो कहां जाएगा, वो निस्तेज करोगे वो। ये तो हो गया दृष्टांत भाई। शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा इसी भाव को प्रकट करते हैं। जहां तुम रह रहे हो वो कमरा जिसके लिए इन्होंने शंकराचार्य जी ने चेतह पेटी कहा। हालांकि हमने कमरे का दृष्टांत दिया है, यहां शंकराचार्य जी ने एक मंजूषा बक्से का दृष्टांत दिया। चेतह पेटी, पेटी माने मंजूषा बक्सा। अब उसी का दृष्टांत ही लागू कर लो। संयोग से कोई बक्सा था आपके पास, किसी दिन कपड़े जल्दी निकालने के चक्कर में फटाफट कपड़ा तो निकाल लिया, कपड़े निकालते ही फट से बंद करना था तो तुमने खुला छोड़ दी उसको। घर में एक छोटी सी चुहिया जो है दौड़ती थी, दौड़े दौड़े आपको अब ये पेटी के साथ मेल खाएगा वो दृष्टांत, अब समझ लो। उसी तुम्हारे बक्स में, उस पेटी में घुस गई चुहिया, अब कपड़े के पीछे आराम से छुप के बैठ गई। कुछ दिन के बाद तुमको बाहर जाना था अमेरिका है ना, लंदन जाना था, अमेरिका जाना था, तो अटैची को अच्छी तरह बंद कर दी, कमरे को बंद कर दिया। अब वो चुहिया तो उस पेटी के अंदर ही बंद। अब इस बीच में वो मर गई चुहिया। 15 दिन के बाद जब वहां से आए और पेटी खोला तो मरी हुई चुहिया के चलते सारे कपड़े वह पेटी दुर्गंध से भर गया। ये क्या है भाई, एक एक कपड़ा खंगाला तो चुहिया के, मरे हुए चुहिया के अवशेष मिल गए, उसको तो फेंका लेकिन पेटी स्वयं ही दुर्गंध से भर गई, कपड़े सब दुर्गंध से भरे हैं। अब संयोग से बढ़िया जो सूट उसी कपड़े में रखा था, शाम को पार्टी में जाना था और दुर्गंध से भरा हुआ कपड़ा उसको पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे बोलो, अपने कोई ही दुर्गंध से भरा है तो लोग तो कहेंगे उसके दुर्गंध को मंद करने के लिए उससे तीव्र सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करोगे। दृष्टांत समझ में आया ना, तो पेटी में भी वही सुगंधित द्रव्य छिड़काव करोगे। अब एक पेटी तुम्हारे पास है, उस पेटी का नाम क्या है, चेतह पेटी, सबसे नीचे लाइन में चेतह पेटी का। वो दुर्गंध से भरा हुआ है, दुर्गंध के कारण क्या है, दुर्गंध के कारण ऊपर बता दिया पहले लाइन से, आशा पास क्लेश दुर्वासनादि। आशा रूपी पास से बंधा हुआ है, आशा ही पास, आशा पास, और क्लेश पंच क्लेश, महर्षि पतंजलि का वो सूत्र को याद कर लो, क्लेश का अर्थ पांच भेद का क्लेश है वो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश, ये पंच क्लेश है, यही वो चुनिया है, समझे कि नहीं। अब चुहिया भी एक तो बड़े बड़े चूहे होते हैं, दूसरे छोटी छोटी चुहिया होती हैं, एक और छछुंदर बोलते हैं, समझे नहीं, लंबा मुख वाला, हाँ, सेब चूहे के जैसे ही होता है लेकिन उसके मुख लंबे होते चोंच, और चूहा जैसे तेज नहीं दौड़ता वो, थोड़ा गति उसकी मंद होती है। ऐसी मान्यता है कि उस चूहे को भले मार लो, छुचुंदर को नहीं मारनी चाहिए। और यह भी मान्यता है कि छुचुंदर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करते, न कपड़े काटते न कुछ काटते, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, कहीं गिरा हुआ है वो तो खा लेंगे छुचुंदर। लेकिन उसके एक विशेषता है, वो जहां भी चलेगी छुचुंदर शरीर से दुर्गंध छोड़ते हुए चलती है। चूहे में दुर्गंध नहीं निकलता, छुचुंदर में तो जिधर गई कि वो दुर्गंध है। विशेष करके उसको किसी ने देख लिया और वो डर गई तो उसने दुर्गंध छोड़ा शरीर से, तो वैसे ही है ना, दुर्वासना दुर्गंध। आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? लहसुन और कांदा की सब्जी खाकर जब चलते हो तो डकार आता है तो भी दुर्गंध आता है कि नहीं? जो नहीं खाता है उसको तो आएगा। आपका ड्राइवर है वो बीड़ी सिगरेट पीता है और तुरंत कोने में बैठकर बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, तुमने कहा ए चलो, वो फटाफट उसने बीड़ी सिगरेट फेंका और आगे सीट में बैठकर स्टार्ट किया, उसी के बगल में तुम बैठे तो उसके बदबू आती है। तो इसी तरह तो है, आशा पास अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम आशा, इष्ट वस्तु प्राप्ति की अभिलाषा यही आशा है। महाभारत में एक श्लोक आया है, संसार में जीवों को जीने का एक ही आधार है आशा, हर व्यक्ति उसी के आधार पर जी रहा है। ये आशा खत्म हो जाए तो व्यक्ति जी भी नहीं पाएगा। मरते दम तक भी जीने की आशा है, उसी के चलते लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, है ना? ये निश्चित है कि मरने की तैयारी है, मरेगा जरूर, मरने दो ना, मरना तो है ही है, गीता पढ़ी है, जाता से ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से, अब मरने की तैयारी है, मरने दो, मन नहीं मानता। अंतिम दम तक हम कोशिश करें, उपचार करें, क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता उस औषधि ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए। एक बहुत वृद्ध थे बेचारे, अच्छे वेदांती थे, बहुत पुराने सत्संगी और वेदांती और अद्वैत वेदांती, शंकर वेदांती के बड़े निष्ठावान व्यक्ति, 90 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है। तो जब हम काठमांडू से आए, यहां प्रवचन शुरू किया, तो उनको फोन किया हमने, तो वह हॉस्पिटल में भर्ती किया है, आईसीयू में भर्ती है। तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, हमने कहा फलाना भाई कैसे हैं? बोले महाराज तो ठीक न थी। बोले हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तमें आशीर्वाद आपो, भगवान थी प्रार्थना करो, सारू थई जाए, पाछा घर आवी जाए, ठीक हो जाए, घर में आ जाए, फिर तुम्हें बुलाए और साथ में बैठकर खाना खाएं। देखो अब हम क्या कहें, अरे 90 वर्ष का हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, उसको अब क्या ठीक होने का है भाई, मरने दो, कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? ना हम कह सकते हैं, ना वो कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता है। हमने कहा सारू थाई जैसे चिंता न करो ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाएगा, आएगा आशा, व्यक्ति आशा से जी रहा है और इसी से बंधा हुआ है वो। क्लेश दुर्वासनादि, पांच रूप क्लेश रूपी दुर्वासना, यही तो दुर्वासना, यही दुर्गंधी है। और ये पांचों दुर्वासना चेता पेटी चित्त को दूषित कर रहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। भेदो दुक्तेर दिव्य गंध ही रमंदे ही, तो चित्त के ये दुर्वासना को हटाने के लिए क्या करना है? आशा साटी कस्य पादार बिंदम, आशा को साड़ी बनाकर जिसने पहन रखा है, आशा साटिकस्य शब्द कैसा प्रयोग किया है देख लो, साड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो संस्कृत में उसको साटिका साटी, और साटी शब्द अपभ्रंश होकर साड़ी हो गया, मूल शब्द है साटी, तो प्रचलित भाषा में उसका नाम हो गया साड़ी। और सामान्यतः साड़ी महिलाएं पहनती है ना, पुरुष तो नहीं पहनते ना है? चलो धोती को ही साड़ी कह दो, अब और क्या कहोगे? अब भगवान शिव क्या पहनेंगे है? अरे बाबा, अर्धा नारीश्वर है, आधा साड़ी पहनना पड़ेगा, आधा धोती पहनना पड़ेगा कि नहीं शिव अर्धा नारीश्वर है कि नहीं बोलो ना, आधा महिला है आधा पुरुष है, आधा स्त्री आधा पुरुष, अर्धा नारीश्वर, तो आधा तो साड़ी पहनना पड़ेगा और आधा धोती पहनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस झंझट से बचने के लिए भगवान शिव ने क्या किया पता है? न धोती पहनी है न साड़ी पहनी है, पहनोगे तो धोना पड़ेगा कि नहीं, मुसीबत बोलो एक टांग में साड़ी पहन लो, एक टांग में पॉइंट पहन लो, फिर कैसा लगेगा भाई? और शिव जी ऐसे करेंगे, बोले झंझट की बात है छोड़ दो, जाने दो, फेंक दिया साड़ी को भी, फेंक दिया धोती को भी, तो फिर क्या पहन लिया? आशा साठी पहन ली। आशा शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो दिगंबर बोलते हो नहीं है? दिगंबर का मतलब क्या हुआ? आशा साठी कस्य है, आकाश को जिन्होंने वस्त्र बनाकर पहना रखा है, ऐसे भगवान शिव दिगंबर। और क्या, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है उसी के शरीर का नाम आशा साठी कस्य आकाश वस्त्र, और उनके आशा साठी कस्य पादारविंदम, चरण रूपी फूल में ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है, दूसरी लाइन से उस फूल के विशेष दिव्यर गंध ही अमंद ही भेद युक्ता। देखो इस फूल में कितनी सुगंध है, लेकिन इस फूल का जो सुगंध है काफी मंद पड़ चुका है। बगीचे से जिस समय उसको तोड़ा होगा तो कितना तीव्र सुगंध होगा इसमें, और कब तोड़ा है, तीन चार दिन पहले तोड़ा होगा, कहां मार्केट कहां कहां से होते हुए यहां आया तो यहां सुगंध है, तो जिस समय पहले तोड़ा होगा वहां कितनी सुगंध होगी बोलो। अमंदई दिव्यई गंदई, क्या दिव्य सुगंध रहा होगा उसमें। शुभ प्रवचन होता है ऊपर तीन चिर माले में, एक बहन नागफणी फूल लेके आती है, रख देती है ना शिवलिंगी, अंदर शिवलिंग रहता है और उसका नाग का फण रहता है, फिर ऊपर चारों तरफ फूल के पंखड़ी का सिंहासन रहता है। क्या सुंदर, क्या बढ़िया फूल है वो, उसमें भी सुगंध बहुत तीव्र है भाई, हैं? बहुत सुगंध है उसका भी। शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे चित्त रूपी पेटी में बक्से में आशा पास से ताला लगाकर बंधे हुआ वो बक्से में पंच क्लेश रूपी दुर्वासना दुर्गंध से इतना दुर्गंधी हुआ हुआ है कि न तुम रह सको न परमात्मा रह सके। और वही चित्त में तुम परमात्मा को बुलाना चाह रहे हो, जब तुमको ही रहना मुश्किल हो रहा है तो परमात्मा कैसे रहेगा। और यदि परमात्मा को बुलाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो दुर्वासना दुर्गंध है पंच क्लेशों के चलते चित्त जो दुर्गंध युक्त हो चुका है, पहले तो उन पंच क्लेशों को हटाओ, मरे हुए चूहे को हटाओ, उसके चलते जो चित्त दुर्गंध हो गया है दूषित हुआ है उसको सुगंध से भरो। तो सुगंध कहां से लाओगे, तो बोले वो शिव के पादारविंद, उसमें से जो निकला हुआ है सुगंध, पाद रूपी अरविंद कमल फूल कैसा है वो, उसकी सुगंधि कैसी है, दिव्येर भेदो युक्तेर दिव्य गंधई अमंदई, मंद नहीं है अमंद है यानी तीव्र सुगंधित है। इसका सुगंध तो मंद हो चुका है ना, तो तीव्र सुगंध तो जिस समय बगीचे में तोड़ोगे उस समय के सुगंध वो तीव्र होगा। तो दुर्गंध से अनभिभूत होने वाली सुगंध या समस्त दुर्गंध को दुर्वासना को अभिभूत करने की क्षमता वाली सुगंध वो तो भगवान शिव के चरण से ही प्राप्त होगा, उससे अपनी चेतः पेटी को सुगंधित बनाओ तब दुर्गंध हटेगा। और जब सुगंधित होगी चेतः पेटी तब तक तुम्हें भी वहां रहने में आनंद आएगा, तो परमात्मा को भी आनंद आएगा। वाह क्या कहना है ना, गुरुस्नान जी महाराज आते हैं ना यहां, ये हॉल तो पूरे पूजा के लिए समर्पण होता है ना, बढ़िया मंच लगता है, बढ़िया सिंहासन पूजा के भगवान के दरबार होता है, और उस पूजा में ऐसे इत्र और ऐसा सेंट क्या 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 फूल पूरा का पूरा है, सुगंध से भर जाता है कमरा, दरवाजे से अंदर घुसते ही मग 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 मग। कमरे में आने के बाद कोई काम हो तभी जाना पड़ता है बाध्यता से, नहीं तो बैठे रहो, आनंदित हो है? तो तुम्हारा चित्त भी इसी तरह सुगंधित युक्त बनाओ। लेकिन वो सुगंध किससे? पादारविंदम, दिव्य गंध, शिव चरण रूपी कमल से निकले हुए सुगंध से सुगंधित करो, तो वो शिव का चरण यानी खुद शिव वहां प्रवेश कर सके। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यानी अपने चित्त को तुम निर्मल बनाओ। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि भेदा, भेदन करने में समर्थ, हटाने में समर्थ। दिव्य गंधी रमंदही आशा साटी कस्य पादार बिंदम, ये शिवजी का नाम है वो क्या ना? आशा साटिक, ये शिवजी का नाम है, कभी सुना है? आज सुन लो। आशा साटिक आकाश रूपी धोती पहने हुए का चरण ले जी, आशा साटिकस्य पादारविंदम, आकाश रूपी साड़ी माने धोती कपड़े पहने हुए का चरण, उस चरण से निकलने वाली सुगंधी, उस सुगंधी से चेता पेटी अपने चित्त रूपी बक्से को तुम क्या करो? वासिताम सुवासिताम, सुगंध से भरो। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ये, हींग नहीं तो हींग बांधा हुआ कपड़ा, हींग निवास, भले उसमें हींग नहीं है लेकिन हींग का वास तो है ना उसमें। इसीलिए जिस कपड़े में हींग बांधा हो, कपड़े ही इतना सुगंध है, हींग की वासना से भरा हुआ हो, तो स्वयं हींग की जो डल्ली है उसमें कितना सुगंध होगा। इसीलिए भगवान को ध्यान करने वाले व्यक्ति का चित्त रूपी पेटी ही सुगंध से भरा हुआ हो तो उसके चरण में और कितनी दिव्य सुगंध होगा है? जिसके चरण की छाप उसके हृदय में पड़ गया, उतनी में इतना सुगंध है तो उस चरण में कितनी सुगंध होगी भाई। चेता पेटी वासिता में तनो तु, और आगे बोलते हैं, कल्याणीनम सरस चित्र गतिम सवेगम सर्वोंगितज्ञम अनघम द्रुवलक्षणाढ्यम चेतस्तुरंगम अधिरुह्य च स्मरा चर स्मरारे तेन समस्त जगताम वृषभाधिरूढ़। संबोधन है इस श्लोक में भगवान शिव के बारे में शंकराचार्य जी ने दो संबोधन का प्रयोग किया। एक संबोधन तो है स्मरारे, स्मरा माने काम, कामदेव, कामदेव का शत्रु यानी कामदेव को नष्ट करके दग्ध करने के बाद सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव को जीवंत किया, लेकिन किस रूप में? स्मरण के रूप में जीवंत किया। पुराण का प्रसंग यह है, तुम लोगों ने कई बार सुना है, कि देवता और असुरों के बीच में बड़ा भारी घमासान युद्ध होता रहा, और जब भी उद्धव हो तो देवता लोग तो हार जाए, असुर लोग ही जीते। उन असुरों में से एक असुर था तारकासुर, असुर का नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव होगा नहीं, कभी भी न मरना हो तो तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, वह तो वेदांत से ही प्राप्त होगा। वो चीज तो ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो सकता है और किसी साधन से नहीं। और क्योंकि तू असुर है इसलिए ब्रह्म विद्या में तेरी वृत्ति जाएगी नहीं। तो दो विकल्प हैं, या तो यह असुरी वृत्ति छोड़कर दैवी संपद युक्त होकर ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो अमर हो जाएगा। अब असुरी वृत्ति को छोड़ नहीं सकता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा नहीं, इसलिए तू अमर तो हो ही नहीं सकता है। और अमृतत्व न कर्मणा न प्रजया धनेन एकेनेव अमृतत्व मानसु, केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न धनेन न प्रजया न कर्मण न प्रजया न धनेन। फिर उसने दोबारा तपस्या की, बोल भाई, बोले हमको तो अमृतत्व चाहिए न मरे। बोले ऐसा होगा नहीं, तू बार बार तपस्या करता है और वो वरदान से दिया नहीं जा सकता है। अमरपना वरदान से दिया नहीं जा सकता। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, अपने स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति और उपायों से संभव नहीं है। एक काम कर सकता है तू, निमित्त मृत्यु मांग, विचार कर और निमित्त मृत्यु मांग, ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। अभी बुद्धि लगा तो असुर तो था ही, चलो बुद्धि लगाता हूं। क्या बुद्धि लगाए? बोले इस समय भगवान शिव की पत्नी सती मर चुकी है, है नहीं? और पत्नी मर गई तो शिव दूसरे शादी तो करेंगे नहीं, है? पत्नी मर गई दूसरे शादी करेंगे नहीं, और पत्नी वियोग के बाद उसके लाश को तो लेकर घूमते रहे भगवान विष्णु ने ही अपने सुदर्शन चक्रों से, चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। उनको पता ही नहीं चला कि शरीर कहां गया। 52 जगह जो 52 टुकड़ों में बिखर गए वही 52 शक्तिपीठ हो गए, है ना? ये भी एक जगह, ऐसा भी पुराण में प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग आता है सती के शरीर को ढो ढो कर चल रहे हैं तो भगवान विष्णु बुरा नहीं मानना, मक्खी का रूप धारण करके सती के शरीर में जाकर विष्टा कर दी और उसके बाद वो शरीर धीरे धीरे सड़ के टुकड़े टुकड़े में गिर गया। ये भी पुराण में प्रसंग है, बुरा नहीं मानना, इसमें कोई किसी की भावना में ठेस लगने की बात नहीं है, ये तो ईश्वर की लीला है, है ना? ये भी प्रसंग है। अब भगवान विष्णु को सुअर बनने में आपत्ति नहीं है तो मक्खी बनने में क्या आपत्ति है? बोलो, उनको तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो तुम्हें हमें है, हमारे भगवान को सुअर बना दिया, हमारे भगवान को मक्खी बना दी। अरे बाबा, सारा सृष्टि ही उनकी है, सब रूप उनका है, उन्होंने सब चीज की उपयोगिता समझकर सब रूप बने, समझे कि नहीं? सब वस्तु की उपयोगिता समझकर ही सब रूप बने, सड़ाने वाले भी वही बने हैं, सड़ने वाला भी वही बने हैं, उसके अलावा तो दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं, उसकी लीला है, इसमें अन्यथा नहीं लेना। तब जब सती का शरीर खत्म हो गया तो वो तो समाधि लगाकर बैठ गए कैलाश में। तो तारकासुर ने विचार किया कि अब ये कभी भी समाधि से उठेंगे नहीं, तो इनका बेटा होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो और से न हो। ले जा, अब ना शिव का पुत्र होगा ना मैं मरूंगा, बस। असुर की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, असुरों की बुद्धि बहुत दूर नहीं जाती है, है? हम लोगों की बुद्धि तो बहुत आगे पहुंचती है। हमारे यहां असंभव नाम का कोई चीज है ही नहीं, समझ गए ना? मायायाम सर्वसंभव, शंकराचार्य ने तो यूं कह दिया है, मायायाम सर्वसंभव। माया यदि आगे है तो माया के चलते असंभव तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो माया को शंकराचार्य ने कहा अघटित घटना पटी ऐसी माया। अभी तक कोई भी घटना असंभव हुए हुए घटना को भी संभव करके दिखावे, उस तत्व का नाम माया। तो माया के सामने तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये असंभव है ना? और क्योंकि असुर माया के रहस्य को नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं असंभव है, असंभव है, है? बोलो। पत्ते में वीर्य को धारण करके पत्ते से बच्चा पैदा करना संभव है कि नहीं? कौन पैदा हुआ पत्ते से? द्रोण। द्रोण का अर्थ पत्ता और उसमें वीर्य धारण करके जो पैदा हुआ द्रोणाचार्य। ले जी, क्या असंभव है बोलो? भगवान विष्णु से बेटा पैदा हुआ सकता है कि नहीं? विष्णु मेल है कि फीमेल है? हैं? विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है? हैं? हो गया ना? अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी किससे पैदा हुए? हरिहर पुत्र स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, हरिहर पुत्र अय्यप्पा। ले जी, मां विष्णु बाप शिव, क्या असंभव है बोलो? दुनिया में असंभव है? मायायाम सर्वसंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। मछली ने हनुमान का बेटा पैदा कर दिया कि नहीं? मकरध्वज बोलो, क्या क्या इतिहास है। अब बोले कैसे संभव है? अरे संभव है, मायायाम सर्वसंभव। माया में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते थे लेकिन तारकासुर इस बात को नहीं जानता था। तारकासुर समझता था कि संभव ही नहीं है शिव का बेटा होना। ब्रह्मा जी समझते थे कि संभव है लेकिन बोला नहीं तारकासुर के सामने। बोलते तो फिर मुकुर जाता वो बोला नहीं, बोले तथास्तु। ओ तारकासुर तो खुश हो गया, अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता बेटा? वरदान मिल गया है, शिव के पुत्र के अलावा और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं शिव का पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मर नहीं सकता, अमर हो गया। तब तो पूरा चारों तरफ आतंक फैलाने लग गया। तो सब मीटिंग हुई केंद्रीय कमिटी का, है? तो विष्णु भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, इंद्र, कुबेर, वरुण सब पहुंच गए। अब ये तारकासुर को मारेंगे कैसे? तो बोले उसका बेटा शिव जी का बेटा होना चाहिए, तो शिव जी के बेटा के लिए तो शिव जी की शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के लिए शिव जी को समाधि से जागना पड़ेगा, शादी करने के लिए शिव जी को अपनी योग्य उनको पसंद की लड़की चाहिए, लड़की कहां मिलेगा? उनका प्रतिज्ञा, शिव जी की प्रतिज्ञा है, सती के अलावा दूसरों को मैं पत्नी बनाऊंगा नहीं, बस वो तो प्रतिज्ञा करके चले गए। नारद जी ने कहा कि चिंता न करो, मायायाम सर्वसंभव, वही जो सती है वो पर्वत की पुत्री होकर पैदा हो चुकी है, उनको सती चाहिए ना, सती तो पैदा हो चुकी है, बेटी तो कन्या तो पैदा हो गई, पहले तो वो समाधि से जगे तब ना शादी करेंगे। लड़की खोजने का काम मेरा, किसका? नारद जी का। और समाधि से जगाएगा कौन? कामदेव ने कहा कि वो काम मेरा, मुझे छोड़ दो, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है, बड़े बड़े का समाधि हमने तोड़ दिया है, वो कौन होते हैं? ये काम मैं करूंगा। तो नारद जी गए पर्वत में, मैनाक और पर्वत को कहा तुम्हारी बेटी पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती है, वो अभी तुम्हारी बेटी पार्वती होकर पैदा हुई है, ख्याल ये रखना कि शिव के अलावा दूसरों को देना नहीं है। पर्वत ने कहा कि शिवजी तो समाधि में बैठे हैं, कैसे शादी करेंगे? बोले वो सब तैयारी हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, एक काम करो, शिवजी भी यहीं कैलाश में है, पड़ोस में ही है, तुम रोज पार्वती को शिवजी के यहां कैलाश में झाड़ू झूड़ू लगाने भेज दिया करो, उनके समाधि स्थल में आसपास में जंगल में बढ़िया फूल तोड़कर ले जाके रखें, बढ़िया फल रख दें, झाड़ू झूड़ू लगाए, ये सब वातावरण सेवा करने लगा दो उनको। बोले ठीक है आप कहते हो तो पार्वती की ड्यूटी लगा दी, और पार्वती को ही निमित्त बनाकर कामदेव पहुंच गया वहां। अब इसी के आधार में शिवजी को मैं जगाऊंगा। उसने फिर पंचबाण छोड़ दी कामदेव ने, तो भगवान शिव को विक्षेप हुआ, आंख खोलकर देखा समाधि से, आंख खोल के देखते ही तो वो तो कामदेव तो खुश हो गया, हे शिव जी ने आंख खोल ली है, समाधि टूट गया है, हे मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। उद्दंड की तरह प्रार्थना करनी चाहिए थी, और उद्दंड की तरह हुआ, देवताओं को सुनाने लगा, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। क्या सफल हुआ? बोले तुम्हारी समाधि तोड़ने में मैं सफल हुआ। क्यों? बोले ये उन्होंने तीसरा खोला और राख जा खत्म, तुरंत ही राख हो गया। अब तो सभी देवता आकर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने समाधि खोली ली है, ये प्रयोजन से ये सब किया है षड्यंत्र। अब तो आप पार्वती से शादी कर लो, एक बेटा पैदा कर दो, और उसके नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध हो और तारकासुर मरे, मुख्य समस्या ये है। शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या से करूं? क्यों इच्छा नहीं महाराज? कामदेव मर गया, और कहां से इच्छा होगी? बोलो। बोले महाराज इसको जन्म दो, इसको जीवन दो भाई। बोले एक ही शर्त पर, ये आज से अनंग होगा, बिना शरीर का होगा। इसलिए कामदेव का नाम क्या है? अनंग। अंग वाला नहीं होगा, कोई शरीर इसका नहीं रहेगा, अनंग होगा। तो अनंग होगा तो ये है कैसे पता चलेगा? बोले जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना है, जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी वह इसका स्मरण करे, वह उपस्थित हो जाएगा, उसका प्रयोजन पूरा कर देगा ये। इसलिए इसका दूसरा नाम होगा स्मरा। अनंग है इसलिए शरीर नहीं रहेगा, और स्मरण करते ही उपस्थित होता है इसलिए इसका नाम स्मरा हो गया। तो कामदेव का नाम स्मरा है, उसको हरण करने के कारण शिवजी का नाम स्मरा हरा पड़ा। तो उसी को संबोधन किया, तब पार्वती इसका शादी हुई। कामदेव अनंग होकर जीवंत तो हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण करते ही पार्वती से कार्तिक भगवान पैदा हुए, और कार्तिक को सेनापति बनाकर देवताओं ने युद्ध किया तारकासुर से, और तारकासुर कार्तिक भगवान के हाथों मारा गया। तो तब से लेकर शिवजी का नाम स्मरहर पड़ा। हे स्मरहर, दूसरा संबोधन है वृषभाधिरूढ़। वृषभ माने नंदी, उसमें अधिरूढ़। भगवान हमारे बंबई के सेठ लोग बरसे ही पीछे गाड़ी चेंज करते हैं, है ना? कंपनी से कोई नया मॉडल गाड़ी आ गया, इंश्योरेंस किया हुआ होता है तो पहले वाली गाड़ी एक वर्ष तक पुराना मॉडल, वो पुराना हो गया उसको फिर हटा दिया, नया मॉडल फिर खरीदो, फिर एक साल के बाद कंपनी फिर और कंपनी नए नए मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसको हटा दो फिर। अरे हमारे बंबई के सेठ लोग हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। हे शिवा, सत्ययुग से तुम एक ही वाहन में चढ़ रहे हो? शंकराचार्य जी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ययुग से लेकर आज तक वृषभारूढ़ एक ही वाहन है, कोई दूसरा वाहन ही नहीं मिला तुमको है? भगवान ने कहा कि क्या करूं, दूसरा वाहन है ही नहीं मेरे युग, तो मैं किस में आरूढ़ हूं? बोले महाराज दूसरा वाहन मैं लाऊंगा, मैंने तैयार की है तुम्हारे लिए, आपके लिए नया मॉडल। क्या है बेटा? कल्याणिनम सरसचित्र गतिम सवेगम। देख लो तुम्हारी नंदी, ये तो पुराने मॉडल का है, इसमें तो स्पीड है ही नहीं, गति नहीं है, वेग ही नहीं है। बहुत कोशिश करके चलाओ तो 40 किलोमीटर पर घंटे की भी ये इसकी एवरेज नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाड़ी आ गए हैं भाई, वाह क्या पूछो नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, मुश्किल से 40-30 किलोमीटर के घंटे के स्पीड ही नहीं थी। तो बोले यार सवेगम, अरे भाई इस वृषभ से हजारों गुना तीव्र गति से दौड़ने चलने वाली आपके लिए मैंने वाहन तैयार किया है। कौन है भाई और उसकी विशेषता क्या है? कल्याणिनम, ऐसा नहीं है कि अपने सवारी, अपने में सवार करने वाले सवारी का तीव्र गति से दौड़ने के कारण भी कभी दुर्घटना ग्रसित होने वाली नहीं है। आजकल तो जितने तीव्र गति के गाड़ी बन गए उतने ही दुर्घटना बढ़ गए कि नहीं, बोलो है? पहले के 30 किलोमीटर के एवरेज की गाड़ी थी तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं था, अब 100-100 150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, है? बिना मौत के मरते हैं। कल्याणिनम, अपनी सवारी का हर हालत में सुरक्षा करती है। सरस चित्र गतिम सभे गम है, कैसे? अभी सुना है कि एप्पल कंपनी ने नया गाड़ी तैयार किया है जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, गूगल ने जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं, क्लच नहीं, कुछ नहीं, बोलो, डिजिटल है, उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस भर दो, जीपीएस की तरह जीपीएस उसमें भर दो, वो जीपीएस ही उस गाड़ी को चलाएगी। आप आराम से पिछले सीट में बैठो, वो उसको सब पता है, सड़क उसको पता है, कहां ब्रेक लगानी है, क्या है, किधर है, आगे क्या है, सब सेंसर लगा दिया है, वो अपने आप ही जाने। और तुम ऑफिस में पहुंच गए, घर में भेजनी है उस गाड़ी को, घर का एड्रेस उसमें भर दो और छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घर जाएगी, अपने घर, दूसरे के घर में नहीं जाएगी वो, है? गूगल ने तैयार किया है, मोहनीश, गूगल कंपनी ने तैयार कर लिया है, अनुमति ट्रायल भी हो चुका है, अब वो कमर्शियल रूप में उसको प्रोटेक्ट करने की अनुमति उसको मिलनी चाहिए प्रोफेशनल रूप में, लेकिन तैयार हो चुका है। शंकराचार्य जी कहते हैं हमने भी ऐसी गाड़ी बनाई है, सर्वेंगितम, इशारे से चलने वाली, सर्व इंगित, इंगित माने इशारा, तम वहां बैठने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे, जैसे संकल्प करे वैसे गति, जहां संकल्प करे वहीं पहुंचे, बोलो, सर्व इंगित ज्ञम, सवारी जो संकल्प करे उसके भावना को समझकर उसके अनुसार गति पकड़ने वाली, क्या सुंदर गाड़ी है। सर्वोंगितज्ञम अनघम, पेट्रोल भी नहीं, घास भी नहीं, तुम्हारी नंदी तो बड़ा भारी घास खाती है, अनघम, तो घास खाने के बाद तो तुम्हारी नंदी तो गोबर भी तो करेगी, करेगा, तो अनघम, न घास खाना है न गोबर करना है उसने, और कोई पोल्यूशन वो छोड़ नहीं सकती है, क्या अनघम, निष्पाप, निर्दोष। ध्रुव लक्षण आढ्यम, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त है। क्या है महाराज, ऐसे सवारी कहां से तुमने तैयार कर ली? हे स्मरारे चेतस्तुरगम अधिरुह्य, चरा मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा मैंने तैयार करके रखी है तुम्हारे लिए, मेरे पास चित्त रूपी घोड़ा, चेतस्तुरगम अधिरुह्य चरा, उस पर चढ़कर तुम भ्रमण करो, चर माने भ्रमण करो, और तुम इस नंदी में चढ़कर तो अमेरिका कैसे जाओगे, स्वर्ग पाताल तीनों लोक में विचरण करना है आपको, खाली कैलाश में थोड़ी बैठना है, चारा जहां इच्छा हो वहां जाओ, बढ़िया सवारी है। चेतस तुरंगम अधिरुहिया चरस मरारे नेता समस्त जगताम, ले समस्त जगताम नेता, घूमो खूब घूमो खूब घूमो, क्योंकि सबको चलाना है, सब जगह पहुंचना है, सबको देखना है, है तो आपको बढ़िया सवारी हुए बिना ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे। वो सवारी हमने नया लेटेस्ट मॉडल का तैयार किया है, वो चेतस तुरगा मेरा चित्त रूपी घोड़े में आप सवारी होकर चलो महाराज। वाह शिवजी तो खुश हो गए, महाराज क्या सुंदर, बिना पैसा कौड़ी के घोड़ा मिल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ